लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए यीशु के वचनों को सुनने के महत्व पर जोर दिया तथा बतलाया कि हमें उसे क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 17 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रातेली ए सोरेल्ले, बुंजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
इल वांजेलो देला लिटुर्जिया दी क्वेस्टा डोमेनिका सी प्रेसेंटा उन विवाचे क्वाड्रेटो डोमेस्टिको कॉन मार्ता ए मारिया।
इस रविवार की धम्म विधि का सुसमाचार पाठ हमारे लिए मार्था और मरियम, दो बहनों का एक जीवित घरेलू दृश्य प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने घर में यीशु का अतिथि सत्कार किया। मार्था तुरंत सेवा सत्कार के कार्यों में लग गई, जबकि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। तब मार्था स्वामी के पास आई और उनसे आग्रह किया, उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। मार्था की शिकायत अनुचित नहीं लगती है, फिर भी यीशु उन्हें जवाब देते हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। संत पापा ने कहा, यह हैरान करने वाला उत्तर है। यीशु कई बार हमारी सोच के विपरीत जाते हैं। संत पापा ने प्रभु के उन शब्दों पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने मार्था के उदार अतिथि सत्कार की सराहना करने के बदले मरियम के मनोभाव को प्राथमिकता दी। मार्था का दर्शन इस प्रकार लगता है, पहले कर्तव्य फिर बाद में सुख। अतः अतिथि सत्कार केवल अच्छे शब्दों से नहीं बनता, बल्कि यह मांग करता है कि व्यक्ति अपना हाथ चूल्हे पर लगाए, कि व्यक्ति उन सारी आवश्यक चीजों को करे जिससे अतिथि स्वागत किया गया महसूस करे। यीशु इससे अच्छी तरह जानते थे और वे मार्था के प्रयास को भी स्वीकार करते हैं, फिर भी वे उसे समझाना चाहते हैं कि एक नए प्रकार की प्राथमिकता भी है जो उससे भिन्न है, जिसका पालन वह अब तक करती आई है। मरियम ने उस उत्तम भाग को महसूस किया है जिसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके बाद अन्य सभी चीजें आती हैं। संत पापा ने कहा,
cosa è questa parte migliore?
और यह उत्तम भाग क्या है?
È l'ascolto della parola di Gesù, dice il Vangelo.
यह यीशु के शब्दों को सुनना है। सुसमाचार बतलाता है कि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। गौर किया जाए कि वह खड़े होकर दूसरी चीजों को करते हुए उनकी शिक्षा नहीं सुने, किंतु यीशु के चरणों में बैठी। उसने समझा कि वे दूसरे अतिथियों के समान नहीं हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यीशु पाने आए थे, क्योंकि उन्हें भोजन और आवास की जरूरत थी, लेकिन वास्तव में प्रभु स्वयं उन्हें अपने वचन के माध्यम से देने आए थे। यीशु के शब्द अमूर्त नहीं हैं, यह एक शिक्षा है जो स्पर्श करता और जीवन देता है, बदलता और बुराई के अंधेरेपन से मुक्त करता, संतुष्ट करता और आनंद से भर देता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यही उत्तम भाग है। यही कारण है कि मरियम इससे पहला स्थान देती है। वह रुकती और सुनती है, बाकी चीजें बाद में आएंगी। यह व्यवहारिक प्रयास के मूल्य से अलग नहीं है, किंतु इससे प्राथमिक नहीं होना चाहिए, बल्कि यीशु के वचन को सुनने के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। इससे उनकी आत्मा के द्वारा सजीव होना चाहिए, अन्यथा यह बांध सक्रियता के रूप में कई चीजों के ऊपर उपद्रव और झल्लाहट मात्र रह जाएगी। तत्पश्चात संत पापा ने यूरोप में अवकाश के समय का लाभ उठाने की सलाह देते हुए कहा,
fratelli e sorelle, approfittiamo di questo tempo di vacanze.
भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस अवकाश के समय का लाभ उठाएं, रुकने और यीशु को सुनने के द्वारा। आज मनन चिंतन हेतु खाली समय पाना बहुत मुश्किल है। बहुतों के लिए कार्यस्थल उन्मद और थकाव भरा होता है। ग्रीष्म काल में सुसमाचार को खोलें और धीरे से बिना हड़बड़ी के पढ़ें। हर दिन सुसमाचार का एक छोटा पाठ लें। यह यीशु की क्रियाशीलता में प्रवेश कराता है। संत पापा ने कहा, आइए हम अपने आप से पूछें, मेरा जीवन किस तरह चल रहा है? क्या यह यीशु के वचन अनुसार है अथवा नहीं है? खासकर हम अपने आप से पूछें, जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ तो क्या मैं कई चीजों को करने के उलझन में रहता हूँ, अथवा सर्वप्रथम ईश्वर के वचन से प्रेरणा ग्रहण करने की खोज करता हूँ?
Noi cominciamo le giornate automaticamente a fare.
कई बार हम दिन की शुरुआत स्वतः चीजों को करते हुए करते हैं, उदाहरण के लिए मुर्गियों के समान। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले प्रभु की ओर देखते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, प्रभु के वचन का पाठ करना और दिन भर के लिए उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। यदि हम सुबह में यीशु के वचन की याद करते हुए घर छोड़ते हैं, तब हमारा दिन निश्चय ही उस वचन के स्वर से चिन्हित होगा, जिसमें हमारे कार्यों को ईश्वर की इच्छा अनुसार दिशा देने की शक्ति होती है। तब संत पापा ने कुंवारी मरियम की याद करते हुए कहा, कुंवारी मरियम हमें उत्तम भाग चुनने में मदद दें, जो हमसे कभी नहीं लिया जाएगा। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने यूक्रेन में जारी मूर्खतापूर्ण युद्ध के लिए दुख प्रकट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से अपील की कि वे शांति के लिए सचमुच कार्य करें। संत पापा ने कहा, मैं हमेशा यूक्रेन के पीड़ित लोगों के निकट हूं, जिन पर हर दिन मिसाइलों की बारिश हो रही है। आप क्यों नहीं समझते कि युद्ध केवल विनाश और मौत लाता है, लोगों को अलग करता, सच्चाई एवं वार्ता को मार डालता है। मैं प्रार्थना और आशा करता हूं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता युद्ध को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि पुनः वार्ता शुरू करने के लिए कठिन परिश्रम करें। तब संत पापा ने जर्मनी के नए धन्य की याद करते हुए कहा, जॉन फिलिप जेनिनजिन येसु समाजी पुरोहित, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में जर्मनी में जीवन यापन किया, उनकी धन्य घोषणा कल जर्मनी के एल्वनजेल में हुई। उन्होंने अपनी प्रेरिताई ग्रामीण क्षेत्र में उत्तेम्बर्ग के डच लोगों के बीच किया। उन्होंने अथक रूप से सुसमाचार का प्रचार किया। वे समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। वे महान प्रेरितिक भावना से प्रेरित और माता मरियम के प्रति विशेष भक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। संत पापा ने कहा कि इस पुरोहित की मध्यस्थता एवं आदर्श हमें अपने भाइयों के बीच सुसमाचार के आनंद को बांटने में मदद दे। तब उन्होंने ताली बजाकर नए धन्य को सम्मानित किया। उसके बाद संत पापा ने श्रीनगर के लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करते हुए कहा, मैं श्रीलंका के लोगों के प्रति पुनः अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना के द्वारा मैं आप लोगों के साथ हूँ तथा सभी दलों से आग्रह करता हूँ कि वे इस वर्तमान संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजें, खासकर सबसे गरीब लोगों के लिए, सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हुए। संत पापा ने सभी धर्मगुरुओं के साथ मिलकर हर प्रकार की हिंसा को दूर करने तथा सार्वजनिक भलाई के लिए वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। तत्पश्चात संत पापा ने कनाडा में अपनी आगामी यात्रा की जानकारी देते हुए यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया। संत पापा ने कहा, अगले रविवार यदि ईश्वर की इच्छा हो तो मैं कनाडा जाऊंगा, इसलिए मैं अभी उस देश के सभी लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। कनाडा के प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, सबसे बढ़कर यीशु के नाम पर, कि मैं आदिवासी लोगों से मुलाकात कर सकूं और उनका आलिंगन कर सकूं। उन्होंने कहा, मैं प्रायश्चित के रूप में तीर्थ यात्रा करने वाला हूं, जिसके द्वारा मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से चंगाई एवं मन परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। संत पापा ने यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया तथा यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की मांग की और अंत में संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया तथा अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
या tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
सुनो मेरा उपदेश नया,
बोले प्रभु,
करो सभी से प्यार,
बोले प्रभु,
तुम सब मेरे प्यारे मित्र हो, सेवक नहीं, सच है मेरी बात, करो यकीन।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। हालांकि संचार के आधुनिक साधन हमारे मानव परिवार के भीतर एकता और संवाद को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन हो सकते हैं, वे विषैलेपन, अभद्र भाषा और नकली समाचारों के स्थान भी बना सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने आम संचार नेटवर्क सिग्निस के लिए एक संदेश में चेतावनी दी, जो अगस्त में सियोल में अपनी वार्षिक विश्व कांग्रेस आयोजित कर रहा है। संत पापा ने कहा, यह उचित है कि इन दिनों हमारी दुनिया में हिंसा और आक्रामकता के नए प्रकोपों द्वारा चिन्हित आपने अपने विश्व कांग्रेस का विषय डिजिटल दुनिया में शांति को चुना है। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया के उपयोग ने कई गंभीर नैतिक मुद्दों को उठाया है, जो संचारकों और उन सभी के लिए जो प्रामाणिकता और मानवीय संबंधों की गुणवत्ता से संबंधित है, प्रज्ञा और विवेकपूर्ण निर्णय की मांग करते हैं। सिग्निस इस चुनौती को पूरा करने में विशेष रूप से मीडिया शिक्षा, कैथोलिक मीडिया नेटवर्किंग और झूठ एवं गलत सूचना का मुकाबला करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संत पापा ने सिग्निस के सदस्यों से लोगों में एक सही आलोचनात्मक भावना विकसित करने, असत्य से सत्य, गलत से सही, बुराई से अच्छाई को अलग करने और न्याय के लिए काम करने के महत्व की सराहना करने, सामाजिक सहमति और आम घर के लिए सम्मान के अपने प्रयासों में लगे रहने हेतु प्रोत्साहित किया। अगले रविवार अगर ईश्वर की कृपा हो तो मैं कनाडा के लिए रवाना होऊंगा, इसलिए अब मैं उस देश के सभी लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने कहा। संत पापा फ्रांसिस कनाडा की प्रेरितिक यात्रा 24 से 30 जुलाई तक करेंगे। वे एडमोंटन, क्यूबेक और इकालोइट शहरों का दौरा करेंगे। संत पापा ने कहा, कनाडा के प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके बीच विशेष रूप से यीशु के नाम पर देश के मूल निवासियों से मिलने और उन्हें गले लगाने आऊंगा। उन्होंने आगे कहा, दुर्भाग्य से कनाडा में कई ख्रिस्तीय, जिनमें धार्मिक संस्थान के कुछ सदस्य भी शामिल हैं, ने सांस्कृतिक आत्मसात करने की नीतियों में योगदान दिया है, जिसने अतीत में विभिन्न तरीकों से देश के मूल समुदायों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। संत पापा ने अप्रैल में कनाडा के इनुइट और मेटिस मूल समुदाय के प्रतिनिधि मंडलों के साथ वाटिकन में आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला को याद किया। इसके दौरान उन्होंने आवासीय स्कूल प्रणाली में उनकी जीवन कहानियों को सुना कि मूल समुदाय के बच्चों को जबरन कनाडाई संस्कृति में एकीकरण करने की एक योजना के तहत उन्हें उनके परिवारों और समुदायों से अलग करके बोर्डिंग स्कूल में रखा गया था। उन्हें हुए नुकसानों के लिए संत पापा ने अपना दुख और एकजुटता व्यक्त की। संत पापा ने कहा, अब मैं एक तपस्या तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि यह ईश्वर की कृपा से पहले से शुरू की गई चिकित्सा और सुलह की यात्रा में योगदान देगा। संत पापा ने कहा, मेरे आगमन की तैयारी में चल रहे कामों के लिए और स्वागत के लिए जो आप मुझे देंगे, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे यहां उपस्थित विश्वासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं द्वारा मेरा साथ दें। उधर संयुक्त राष्ट्र आज अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मना रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका के उस नेता की याद में मनाया जाता है जिन्होंने रंग भेद की लड़ाई लड़ी और उसे हराया। यूएन महासचिव गुटेरेस के लिए मंडेला एक उदाहरण है जो हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके गृह युद्ध का शस्त्र क्षमा था और यह एक ऐसा विषय है जो उन्हें विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस के मजिस्टेरियम के साथ तालमेल बैठाता है। किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखने का एकमात्र वैध तरीका यह है कि जब आप उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। संत पापा फ्रांसिस द्वारा कई बार दोहराया गया यह वाक्यांश विशेष प्रभाव के साथ वर्णन करता है कि हमारे समय के एक महान व्यक्ति ने क्या देखा, जिसके बारे में आज उनके जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अपनी अहिंसक गृह युद्ध में एक सपना देखने वाले जिसने कभी हार नहीं मानी, मंडेला ने दिखाया है कि कोई भी दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हम सभी की गरिमा समान है। और ठीक इसी कारण से संत पापा फ्रांसिस अपने प्रिय अभिव्यक्ति के साथ इसे फिर से कहते हैं, कोई भी अपने आप को अकेला बचा नहीं सकता। दक्षिण अफ्रीकी नेता ने 27 साल जेल में न्याय और समानता के अपने विचारों के लिए यातना सहा था। उन्हें अश्वेतों पर श्वेत वर्चस्व स्वीकार नहीं था, लेकिन वे उनके विपरीत भी नहीं थे। इस कारण से जब वे अंततः 11 फरवरी 1990 को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में लौट आए और कुछ साल बाद उन्हें अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो उन्होंने अश्वेतों की ओर से प्रतिशोध के किसी भी प्रलोभन को मौलिक रूप से खारिज कर दिया। रंग भेद ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गहरे घाव दिए थे। उन्होंने उनमें मेल मिलाप और देखभाल की एक साहसी प्रक्रिया शुरू की। इस प्रतिबद्धता ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया। मृत्यु के 9 साल बाद भी वे नई पीढ़ी के लिए सबसे प्रेरक शख्सियतों में से एक हैं। उधर पूर्वी अफ्रीका के धर्माध्यक्ष सम्मेलन AMECEA की 20वीं आम सभा 9 से 18 जुलाई तक तंजानिया में चली। AMECEA बनाने वाले 11 अफ्रीकी राज्यों के सदस्यों द्वारा अधोहस्ताक्षरी बयान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है और लौदातो सी की शिक्षाओं के अनुसार अभिन्न पारिस्थितिकी के लिए काम करने हेतु प्रतिबद्ध है। बयान की शुरुआत कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले का एक उद्धरण से की गई, जिन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि दूसरों की देखभाल की कमी उन व्यवहारों और प्रथाओं के साथ सह अस्तित्व में है जो सृष्टि को नुकसान पहुंचाते हैं, और यह कि जब सृष्टि के लिए अभिन्न देखभाल की कमी होती है और जब समग्र मानव विकास का अभाव है तो बंधुत्व प्रभावित होता है। यह मूल रूप से विश्व पत्र लौदातो सी का संदेश है, जिसे बैठक का आधार बनाया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।